نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 60 آیت نمبر 71 سے 85 سورۃ النساء. لیسن نمبر 60 آیت نمبر 71-85 سورۃ النساء. سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. بہت کرٹیکل سبق ہے, نفاق کے قصوں سے بھرا ہوا. پچھلے سبق کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلے سبق کی آخری آیات میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بات ہوئی, آج یہاں اس کے عملی تقاضوں کی بات ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ انسان کا نفاق کس موقع پہ کھلتا ہے اور کسی انسان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے, اس کا اظہار کس وقت پہ ہوتا ہے. آج کے سبق میں وہ آیت بھی آئے گی جس نے ہمیں فتح اور کامیابی کو ٹیکل کرنا سکھایا, یعنی کامیابیاں ملیں تو کیا ایٹیٹیوڈ ہو. جیسے ہم نے پیچھے سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کی صورت میں دیکھا تھا کہ ناکامیوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, پھر آج کے سبق میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ انسان دین کے کاموں میں سستی کیوں کرتا ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے. پھر آج کے سبق میں جہاد کب فرض ہوتا ہے اور کب فرض کفایہ رہتا ہے, اس پہ بھی ہمیں انشاءاللہ مدد ملے گی. اور خاص طور پہ آج کے سبق میں ٹریننگ کی بات بہت ہے. پھر اسی طرح آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب کسی جگہ مسلمان پسے ہوں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسرے مسلمانوں کا اس وقت کیا رویہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح موت کی حقیقت جو سارے دکھوں کا علاج ہے اور سب سے بڑا دکھ بھی ہے. دکھوں کا علاج کب ہے؟ کہ جب انسان اللہ کے دین کا غم لگا لے تو مشکلات تو پڑیں گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج کے سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ افواہ سازی, یعنی سنی سنائی باتیں, ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں اور ان باتوں کا آفٹر ایفیکٹ کسی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ پھر قرآن میں تدبر, اس کے اوپر انشاءاللہ آج کے سبق میں بات ہے. اتنا کچھ ہے ان آیات میں کہ یقین کریں کہ مجھے اس وقت یہاں بیٹھ کر پسینہ آ رہا ہوتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ حق ادا کرواتے ہوئے سبق کو پورا کروا دینا. آیت نمبر 71 سے وہاں سے ٹاپک ہے ہمارا, اور انشاءاللہ تعالی پھر جہاں تک ایک ٹاپک کی آیات ہے ان کو ساتھ لوں گی. جی آیت نمبر 71, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالی ایمان والوں کو پکارتے ہیں, کیا کرو؟ خذو حذرکم, اپنا بچاؤ لے لو, یعنی بچاؤ کا سامان لے لو. تم بیوقوف نہیں ہو کہ تم ہتھیار نہیں بنا سکتے, تم ایٹامک انرجی نہیں بن سکتے. بالکل لے لو, پوری اجازت ہے. اگر دنیا میں سے ہتھیار ختم ہوں گے تو سب کے ختم ہوں گے, پھر مسلمان کے بھی ختم ہوں گے اور کافر کے بھی ختم ہوں گے. اسلام مسلمان کو اتنا بدھو نہیں بناتا کہ دوسرے تو لیٹسٹ سے لیٹسٹ انرجیز حاصل کرتے جائیں اور مسلمان جو ہے صرف اس نام پر کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, صرف اس بات پہ کہ جی اللہ خود ہی ہمیں بچے گا, کہا نہیں. خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. کیسے؟ فانفروا سباتن, اور نکلو, یعنی جہاد کے لیے, خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں یعنی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں, انفروا جمیعن, یا پھر فوج کی صورت میں, یعنی جیسے حالات ہوں, جو نیڈ آف دی آور ہو اس کے مطابق نکل پڑو. کبھی اکیلے جانے کا امیر حکم دے دے کسی کام پہ تو اکیلے جاؤ, اور اگر سب کو ساتھ لے کر کسی جگہ جانا تھا تو سب کو ساتھ لے کر جاؤ. یہ آیات غزوہ احد کے بعد کے دور میں نازل ہوئی. ہم پیچھے دیکھ چکے کہ سورۃ نساء جو ہے یہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیانی وقت میں نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا کہ احد کی وقتی بھگدڑ کی وجہ سے مسلمانوں کی ساکھ بکھر چکی تھی. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو جو ایک فتح और एक उसका नशा लोगों में पड़ गया कि वो हा। और हम खूब जानते हैं कि जब कोई एक अच्छा काम करता है ना, तो सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो वाह हा। और जरा कोई काम खराब हो जाए या कमी हो जाए, तो सब उस काम को छोड़ने को और उस गिरोह से हटने को सोचने लगते हैं। ये है असल में फतह और शिकस्त का वो नजरिया, जिसको सिर्फ वही समझ सकता है कि जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होता है। तो जब उहद की वजह से चारों तरफ गड़बड़ हुई, जो किनारों पे रहने वाले लोग थे मदीना के, उनकी हिम्मतें बढ़ गईं, मुसलमान हर तरफ खतरों में पड़ गए। आए दिन जो खबरें चढ़ती थी, फला कबीला मुसलमानों पे हमला कर रहा है, उन्होंने अपनी फौजें बॉर्डर्स पे जमा कर ली, फला फला वहां हमले की तैयारियां। इसी दौरान एक बहुत बड़ा धोखा भी दिया गया मुसलमानों को, वो जहाँ मौका आएगा सुना देंगे, लेकिन ये कि कहा ये कि हमारे साथ कुछ लोग भेजिए ताकि वो दीन सिखाएं, आप तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, जरा अपने भी चंद साथियों को हमारे इलाके में भेज दीजिए, वहां जाके वो दीन सिखाएं। किसने नहीं खुशी की होगी, सहाबा कराम में से अल्लाह के नबी ने चुने हुए 70 सहाबा, जिनमें हुफाज भी थे, उलमा भी थे, यानी जो काम दीन का कर सकते थे। और आप जानते कि किसी सोसाइटी की क्रीम इल्म वाले होते हैं और अमल वाले, अमल तो लोग अपने लिए करते हैं लेकिन इल्म वाले अपना इल्म फैलाते हैं। अल्लाह के नबी ने 70 लोगों को जमा किया और उनको भेज दिया, सब खुशी खुशी गए। उस कबीले वालों ने धोखा दिया, उन 70 के 70 को शहीद कर दिया। इतना बड़ा लॉस था मुसलमानों के लिए कि अल्लाह के नबी कई दिन तक उनके लिए बद्दुआ करते रहे, कनूत नाजला की सूरत में फजर के बाद। अब ये सारे हमलों पे हमले हो चुके थे, किसी तरफ मुसलमान मुतमईन नहीं दिखते थे, ऐसे लगता था कि खतरा खतरा जिहाद। के नबी सल्लम को एक रात कहना पड़ा कि कोई ऐसा है जो आज की रात मेरे घर के बाहर पहरा दे दे और मैं सुकून से सो जाऊं। ये वो कैफियतें थी उस दौर में कि मुसलमान हथियार बांध के जिस्मों के साथ सोते थे कि अगर रात में हमला हो गया तो हमारे पास हथियार मौजूद हो। उस मौके पे अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम, बचाओ ले लो। खिज़र कहते हैं बचाओ को, हज़र अल मौत पीछे आप पढ़ चुके सूरत अल बकरा में। सुबात का लफ्ज़ जो है यहाँ, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि बचाओ लो। देखिए, दो तरह के हथियार होते हैं, एक वो जिनसे आप अपना दिफा करते हैं, यहाँ वो मुराद है, यानी मिसाल है कि शील्ड पहन लो अपने ऊपर, हौद की ये जो मतलब कड़ियाँ हैं उनको लटका लो, और दूसरी वो चीज़ें होती है जिससे आप दुश्मन को मारते हैं, जैसे तीर हैं, तलवार हैं। तो कहा यहाँ क्या क्या कि बुनियादी तौर पे तुम्हें जो चारों तरफ से खतरों ने घेर लिया है, तो तुम इनके हाथों में तर निवाला ना बनना, बल्कि तुम तैयारियां कर लो। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा हुक्म था कि जिस पे हर ईमान वाला क्या कहेगा, आमन्ना व सद्दकना, लबैक, ऑफ कोर्स हम करेंगे, कि क्यों जी हमें हुक्म दिया। और आगे हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह कि अब जिहाद की नई नई तैयारियां, अब इजाजत भी मिल रही है। और जहन में ये भी रख लीजिए कि 13 साल पीछे जो भी मुश्किलात थी उसमें से मुसलमान गुजर चुके थे, तो अल्लाह ताला ने कहा ले लो। फन फिरू नफर से निकलने को कहते हैं, टू लीव कहते हैं ना, मैं घर से निकल रही हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे नफरा जंग के लिए निकलना है। नफीर कहते हैं, नफीर आम, यानी जंग की कॉल दे दी गई, कॉल टू वॉर के मानों में। इसी तरह सुबातिन जो है ना, सुबातुन की जमा है, सुबह छोटी जमात को कहते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक गिरोह हो सकता है, समझिए कि अकेले वाला ही सामानी बन जाता है, अलग छोटा गिरोह। सरिया कहते हैं छोटी छोटी टोलियों को, और अविन फिरू जमीयन, या फिर सब निकलो, मुराजे के बड़ी जंग की सूरत में, या मुराजे के सबको जैसे हालात हैं। लेकिन होता क्या है, अब जरा आयतों के साथ चलिए। वाइन नमिन कुम लमई लयुबत्तीयन्ना, और अलबत्ता तुम में से कोई एक ऐसा भी है, यानी जिहाद की जब कॉल आती है तो हाँ तुम में से कोई ऐसा है जो लड़ाई से जी चुराता है, फिर क्या होता है, फइन असाबत कु मुसीबतुन, फिर अगर तुमको मुसीबत पहुंचे। कुम से यहाँ कौन मुराद है, मुसलमान, ठीक है, और मुसीबतुन से मुराद है यहाँ वो सारी मुसीबतें जो जंगों में आती हैं, दुश्मन के तीर, उसकी तलवारें टूटती है, गर्मी है, सर्दी है, घर के तकाजे छोड़ के निकलना पड़ता है, कहीं पांव जख्मी होते हैं, कहीं पैदल चलना पड़ता है, जख्म यानी शिकस्त की सूरत में, किसी भी सूरत में तुम्हें जब निकलना पड़ता है तो उस वक्त क्या कहता है। अब यहाँ से अगर आप ये जुमला, बल्कि इससे अगली आयत बहुत ट्रिकी है, आप कभी सिर्फ तर्जुमे से नहीं समझ सकते अगर बीच में पॉजेस नहीं देंगे, तो मैं आप कोशिश करूंगी कि जहां तक एक बात समझ आती है वहां रुक के फिर आपकी मदद करूं और उसके बाद फिर आगे चलूं। अब हुआ क्या, कॉल हुई जिहाद की, सब निकले, लेकिन कोई एक ऐसा है जो लयोबत्ती अन्ना, योबत्ती अन्ना का रूट क्या होगा, बा तो हमजा, बुतन, बती कहते हैं सुस्त को, आहिस्तगी, लेजीनेस, लेजी बॉय कह लें, यानी अलबत्ता जरूर देर लगाते हैं। बत्ती कहते हैं यानी तोए सही है, सुस्त रफ्तार शख्स को, और बत्तो तोए पे जबर और शद होगी, तो सुस्त करना यानी दूसरों को सुस्त करना, मतलब ये है कि दीन के कामों में ये सुस्त रहते हैं। जब दीन के काम का कोई तकाजा आता है तो सुस्ती इख्तियार करते हैं। और साथ ही साथ देखते जाइए कि आज मेरे और आपके लिए नायतों में क्या है। हम में से बहुत ही कम लोगों को जिहाद की कॉल मिलती है और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन आज के दौर का जिहाद, जिहाद की अव्वलीन कोशिश इल्म का जिहाद है, जिसमें इंसान अपने नफ्स से जिहाद करता है, नींद से जिहाद करता है, मुआशरे से जिहाद करता है। तो ऐसे वक्त में जो बंदा सुस्ती कर लेता है उसका तस्करा है। फिर क्या कहते हैं, कौला कद नमल्लाहु अलैया इस्लमकुम माहुम शहीदा, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया है कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। समझ रहे हैं किस चीज़ को अल्लाह का फजल कह रहे हैं? इधर नेकी के काम से रुकने को। मिसाल है कि आप सब यहाँ पढ़ने आए और बाद में ऐलान हो गया कि आज सब जा नहीं सकते, आधे घंटे में सब ने हॉल क्लीन करना है। अब जो थे उनको तो करना पड़ा, आधा घंटा लेट हुए तो हो सकता है घर में कई प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई, आपको करना पड़ा। तो जो नहीं होगा वो कहेगा देखा अल्लाह शुक्र है मैं नहीं थी, मैं फंस जाती। तो लिखिए यहाँ एक जुमला बड़ा बड़ा करके कि मुनाफिक दीन के काम से रुकने को अल्लाह का इनाम समझता, जबकि मोमिन का हाल क्या है कि अल्लाह के काम को अपॉर्चुनिटी समझता। चलो जान छुटी, ये रवैया नहीं होता। वो कहता है हाय नेकी छूट गई, हाय दर्जा छूट गया, हाय जिहाद छूट गया, हाय अल्लाह ने अपना काम मुझसे छीन लिया, हाय ये नेकी कल तक मेरे हाथ में थी आज मैं नहीं थी, मेरी नेकी छीन गई। तो ये फ़र्क है। और यहाँ से आप पॉइंट्स भी नोट करते जाएं कि नमाज़ें पढ़ने से, रोज़े रखने से, हज ज़कात से मुनाफिक का पता नहीं चलता। अगर मुकाम शौत ना आता और 300 लोग गज़वे अहद में साथ ना छोड़ते तो शायद आखिर तक अल्लाह के नबी को ये भी ना पता चलता कि अब्दुल्ला बिन उबई के साथ इतने लोग जो हैं वो अंदर से इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तो निफाक की अलामत के दीन के काम मुश्किल लगते हैं। और दूसरी चीज़ भी इधर नोट कर लीजिए, यह जो लफ्ज़ पीछे सुबातन और साथ ही साथ जमीयन का है, अकेले निकलने की बात नहीं आई, सुबात छोटी जमात या बड़ी जमात, मतलब ये कि दीन के मामलात में इज्तमाईयत, इज्तमाई काम, मशवरा, इरादा, साथ लेकर चलना, सब के साथ मिलके कहना। आप कहते हैं मैं घर में अकेले बैठ के भी पढ़ सकती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ कि मैं घर में बैठ के नेट के थ्रू आपसे क्लास ले सकती हूँ, रियली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत साल का अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है। लेकिन जो यहाँ आके मुझे आपसे एनर्जी मिलती है, जो आप रास्ते में आती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा ताकत देती हैं। बिल्कुल इसी तरह दीन का काम जो है ये इज्तमाई काम है। जब तक इंसान अपने आप को किसी चीज़ से बांधे ना तब तक बात नहीं बनती, और फिर हिफाजत का भी यही तकाजा होता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे शख्स का रवैया क्या है कि नेकी के मौके से महरूम रहने को अल्लाह का इनाम करार देता है। चलिए अगले पे चलिए, आयत 73, वल इन असाबकुम फज़लु मिनल्लाह, और अगर तुमको पहुंच जाए फजल अल्लाह की तरफ से, किनको? मुसलमानों को। फजल से मुराद क्या है? फतेह, माल गनीमत, तारीफ, रोब पड़ गया, बड़ी वाह वाह हुई, अगले दिन खूब तारीफ़ें के गुन गाए गए कि ये किया वो किया, यानी खूब उस वक़्त तारीफ़ें उनकी होती गईं, तो उस वक़्त उसका हाल क्या होता है? लयकूलन्ना, अलबत्ता वो कहता है। कौन कहता है? यही मुनाफिक कहता है, का अल्लम तकुम बैनकुम व बैनहू मवद्दा, क्या उसके और तुम्हारे बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस जुमले को, ये जितना जुमला भी है ना अरबी में, बताती हूँ, लयकूलन्ना के बाद अलबत्ता वो कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक ही ना था। ये जुमला मोतरिजा है, आप ब्रैकेट में कर लीजिए। अरबी में करना चाहते हैं तो कितना हिस्सा करेंगे, मैं फिर बोल देती हूँ, लयकूलन्ना के बाद का अन्ना से पहले ब्रैकेट लगाइए छोटी सी, या कलर कर लीजिए कोई एक रंग का, का अल्लम तकुन बैनकुम व बैनहू मवद्दा, इतनी बात को ब्रैकेट में करें तो आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको समझाती हूँ कि जब मुसलमानों को कोई फतह हासिल हुई, ठीक है, अब फतह से वो महरूम हो गया, ठीक है ना, फजल मिल गया, तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि ऐसे क्रिटिकल वक्त पे जब वो उस फतह से महरूम कर दिया गया, तो उस वक़्त वो इतना ज़्यादा मुसलमानों के साथ अपने आप को पिछली दोस्तियों और पिछली मोहब्बतियों का एक किस्म का वास्ता देता है, क्या बात है, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं थी, यानी ये कलमा हसरत है। कैसे कहेगा इसको, आपके ही मुख्तलिफ एंगल से समझेंगे कि जब मुसलमानों को फतह होगी, मुसलमान माल गनीमत लेकर आएंगे, तो ला यकूलन्नका लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दा, तो उस वक़्त वो फिर हसरत के साथ कहेगा जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्या बात है, क्या हो गया, अगर इस मौके पे मैं नहीं साथ मिल सका तो क्या भला मेरी तुम्हारी पहली कोई मोहब्बत नहीं थी, यानी पिछली मोहब्बतों का वास्ता देता है, समझ आ रही है, यानी पिछली कारकर्दगियों पे इनाम अब दोबारा लेना चाहता है कि भाई तब तो मैं था, अब तो नहीं हूँ, दिस एंड दैट, अब मैं ये कर लेता, ये और वो, तो फिर ऐसे वक्त में क्या तुम मुझे कुछ ना देते। और या लैतनी कुंतु माहुम, ये है अफसोस, हाय काश मैं उनके साथ होता, फाफूजा फौजन अजीमा, तुम ये तो बहुत बड़ी कामयाबी मुझे हासिल हो जाती। आपने एक चीज़ महसूस की, मुनाफिक को इस्लाम के फ़ायदे और नुकसान से इतनी खुशी नहीं होती, उसका सारा रोग हम और गम, फाफूजा फौजन अजीमा, मैं कामयाब हो जाता, हाय मैं क्यों महरूम रह गया। पीछे देखिए, इस्लाम को शिकस्त हुई, नुकसान हुए, कहता शुक्र है मैं साथ नहीं था। एक जुमला भी आपने उससे सुना कि हाय यहाँ ये नेकी का काम हो सकता था, नहीं हुआ, मुसलमानों को खैर मिल सकती थी, नहीं मिली, उस वक्त चूक गए, वो बच गया, अल्लाह तेरा शुक्र, दर्द नहीं है। लिख लीजिए, मुनाफिक के दिल में इस्लाम का दर्द नहीं होता। निफाक क्या है, संग दिल होना, बेदर्द होना, इंसानियत तड़प रही है, इंसानियत सिसक रही है, इल्म की कमी, अमल की कमी, इंसानियत कैसे जहन्नुम का ईंधन बन रही है, और इंसान इस शौक में जिए कि मेरी अपनी ज़िंदगी मज़े की है, शुक्र है अल्लाह का मैं नहीं गया, ठीक है कुछ नहीं होता, मरते हैं तो मरें, ख़राब काम करते हैं तो करें। मुनाफिक जो है वो सिर्फ उसको अपनी जान पड़ी होती, लिख ले, सेल्फ पिटी का शिकार, ऐसा शख्स कभी दीन का काम नहीं करता। हम सब यहाँ अपना जायज़ा लें, जिस शौक से हम ज़ाती ज़िंदगी के काम करते हैं, अपनी घरदारी, सिर्फ घर को ही अल्हम्दुलिल्लाह जो सरासर इबादत है, हम उसको भी इंजॉय करते हैं, घर का काम दीन का वो काम है जिसको हम इंजॉय करते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट सामने दिख रहा होता है, खाना पकाने को कितना इंजॉय करते हैं, ये दीन का काम है, बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना हम इंजॉय करते हैं, लेकिन दीन के इज्तमाही कामों को हम कितना शौक से करते हैं, ये है सवाल। अब देखिए कि यहाँ आपको दीन का मिजाज समझ आता है, मिलजुल के काम करना, फ़ायदे बहुत हैं, मगर इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए कि जिस जगह से दीन के नाम पर लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, वहाँ काम करने की क्या ऑनर हो सकती है। एक यहूदी का कॉल है, कहते हैं कि हम मुसलमानों जितनी नमाजें तो कोई नहीं पढ़ते, सच है ये बात, उन्होंने अपने दीन में जो चेंजेस की थी ना, उसमें से उन्होंने इबादत को एक किस्म का साइड पे कर दिया, लेकिन जुमला लिखने के काबिल है, चाहे किसी का भी है, कि हम मुसलमानों जितनी नमाजें तो कोई नहीं पढ़ते मगर दीन के काम पर खर्च करते हैं और इसीलिए हम तरक्की कर रहे हैं, सच है कि नहीं। मुट्ठी भर लोग हैं, यकीन करें, आप चावल चुने ना और चावलों के अंदर जितने रोड निकलते हैं या उसमें जितने वो छिलके के साथ वो चावल होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जौ के बराबर, इतने लोग हैं इस वक्त दुनिया में यहूद, पूरी दुनिया की उन्होंने क्यों कंट्रोल लिया हुआ, वो कहते हैं कि हम दीन के नाम पर खर्च करते हैं और इसीलिए हम तरक्की कर रहे हैं। आज हम खुद को भी लेके सोचें, हमारा कहीं ये हाल तो नहीं है, क्या माल का हसूल हमारी नज़रों में फतेह अजीम तो नहीं है। आप देखिए कि दुनिया की कोई चीज़ दुनिया में अल्लाह के नाम को फैलता देखने से ज़्यादा अजीम हो नहीं सकती। जिसको दीन से मोहब्बत होगी, उसको दीन वालों से भी मोहब्बत होगी, उसको दीन के कामों से, दीन की जगह से भी मोहब्बत होगी, और ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से मिलती है। जो आपस में खुद जुड़े हुए नहीं हैं वो कभी भी दूसरों से भी नहीं जुड़ेंगे। आप देखिए कि दुनिया में एक पत्थर कहीं पड़ा हो ना तो एक बंदा अकेला उसको नहीं उठा सकता, तो दीन का काम तो भारी, पत्थरों से ज़रा भारी है, इसको एक बंदा कैसे कर सकता है, इसके लिए कैसे इज्तमाई माहौल की जरूरत होती है। और मुनाफिक कभी किसी के अंडर आके काम करने को पसंद ही नहीं करता, इसलिए उसको गम क्या लगा होता है कि मैं ये काम क्यों करूं जिसमें मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, मुझे कुछ और नहीं मिलेगा, मेरे साथ कोई और हाल नहीं है, हालात नहीं है, लिहाजा इस पे वो खुश होता है। अल्लाह ताला आप बात को आगे बढ़ाते हैं, पूरा मौजू आगे तक चलता जाएगा, हम इसमें से देखते जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं आयत 74 में, फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरून अल हयात अद-दुनिया बिल आखिरा, बस अल्लाह की राह में किताल करना चाहिए इन लोगों को जो दुनिया की जिंदगी को आखरत के इवज़ फरोख्त करने के लिए तैयार है। यानी दीन के रास्ते में सिर्फ वो चलेगा जो इस दुनिया दनी के चंद दिन के फायदे छोड़कर आखरत के हमेशा के फायदे लेना चाहेगा। दैट्स इट, सिर्फ वो करेगा, हर एक नहीं कर सकता। वजह क्या है कि इंसान नेकी के नाम पर, दीन के नाम पे भी वो काम करना चाहता है जिसका फौरी नतीजा उसकी आंखों के सामने आ जाए, और दुनिया में अमूमन ऐसा होता दिखता नहीं है। अल्लाह की राह में लड़ना दुनिया तलब लोगों का काम नहीं, वो तो अपनी छोटी छोटी दुनिया की चीज़ों पे अल्लाह के दीन को पीछे कर देंगे। ये तो सिर्फ वो कर सकता है जिसके नज़र में अल्लाह की रज़ा, मरदात अल्लाह, जो अल्लाह और आखरत पर मुकम्मल यकीन रखे और दुनिया में अपनी कामयाबी और खुशहाली के सारे इम्कानात, हर किस्म के दुनियावी मुफाद को सिर्फ इस उम्मीद पर कुर्बान करने को तैयार हो कि मेरा रब मुझसे राजी होगा। इस दुनिया में नहीं तो आखरत में तो ज़रूर मुझे अजर मिलेगा। वो लोग जिनकी असल नज़रें जन्नत में लगी हुई हैं, जिनको अल्लाह से मिलने के दिन का शौक है, वो यहीं से पलट जाए जिसे दुनिया है प्यारी, जिसे जान प्यारी है, सब यहाँ से चले जाए। सिर्फ वो अल्लाह के रास्ते में जमेगा आखिर तक जिसको अल्लाह से प्यार होगा। सोचिए वो दिन कैसा होगा जिस दिन हम रब से मिलेंगे। आप अपनी मौत को सोचें, आप सब जानते हैं रिसेंटली हुसामा साहब के वालिद की डेथ हुई, तब वो ऐसा ऐसा बातें खुलती हैं, उनकी डेथ ऐसे हुई, ये हुआ, उसके बाद हुआ, ये ख्वाब आया, लोग बातें करते हैं ना, तो मेरे दिल दिमाग में आजकल सिर्फ एक ही रील चल रही है, इसी तरह अगर अचानक खड़े खड़े मेरी मौत आ जाए, क्या मैं अल्लाह को मिलने को तैयार हूँ? क्या मैं अपनी दुनियादारियों की वो चीज़ें जिसके पीछे मैंने अल्लाह के रास्ते को पीछे डाला हुआ है, उसको एक लम्हे के लिए भी उस वक्त नोटिस में रखूंगी? एक लफ्ज़ ना बंदा कह सके मरते वक्त, ये दुनिया है जिसपे हम मरते हैं, अगर अल्लाह मोहलत ना दे तो मैं एक लफ्ज़ नहीं कह सकती कि मेरे लिए ये मेरी चीज़ों को कर देना, उसको ये कर देना। सिर्फ नज़रों को आगे रखने की ज़रूरत है। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, आमतौर पर आप कहाँ देखते हैं ड्राइविंग करते हुए? यूँ देखिए कि ये ड्राइविंग सीट है ना, अब जैसे ये मेरे आगे जो टेबल है, आप लगा लीजिए ये गाड़ी का बोनट है, ठीक है ना? बोनट के आगे भी नीचे जगह है, और एक वो रोड है जैसे मैं अब आपको देख रही हूँ, और एक वो है जैसे मैं यूं देखूँ। आमतौर पे आप किसको देखते हैं? सिर्फ बोनट को नहीं देखते ना, आप थोड़ा सा बिल्कुल मिडल अपनी आई साइड को वहाँ देखते हैं जहाँ दूसरे भी लोग हैं। जो करीब सिर्फ बोनट को देखेगा क्या होगा? सामने से झटका लग जाएगा। और इधर ना देखे, सिर्फ यूं देखे आंखें उठा के, तो हो सकता है यहाँ कोई आ जाए, डंप शंप आ जाए, तो उसमें गाड़ी चला जाए। बैलेंस रवैया क्या इंसान को कि वो आगे देखे, दूर देखे। ये जो दुनिया को देखने वाले लोग ना सिर्फ बोनट को देख रहे हैं, फिर झटका पड़ता है तो चीज़ें निकल जाती हैं। ओ आगे तो कोई आ रहा था, पत्थर हमने देखा ही नहीं, हम तो अपने आप में खोए थे, ये खुद पसंद लोग हैं, मेरी जात, मेरी जान, मेरा, मैं। जो बहुत आगे देखते हैं ना, बिल्कुल दूर की चीज़ें, ये बिल्कुल तसव्वुराती लोग हैं, वो कहते हैं बस तसव्वुर से जन्नत मिल जानी है, कुछ नहीं होगा, देखेंगे कोई आई नहीं रही गाड़ी, वो देखो वो मैं देख रही हूँ इतनी दूर कोई गाड़ी नहीं है मेरे आगे, बस ठीक है मैं चलती हूँ, वो करीब नहीं देखते। याद रखिए हमेशा ज़िंदगी का बैलेंस आपको बिल्कुल अपने सामने एक बिल्कुल ख़ास एंगल पे देखने पे। अल्लाह ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अपने में खोए रहें, और अल्लाह ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ जन्नत में खो जाएं। बैलेंस रखो, और जब तकाजे दो टकराते हैं तो तुम्हारा फैसला क्या होता है, यही बता दिया, यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा। ऐसे नहीं लगता कि कोई गैरेज सेल लगी हुई है यहाँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं अमेरिका में, जब लोग कहीं मूव होने वाले होते हैं तो अपने घर का सामान जो यूज होता है उसको बेच देते हैं, बहुत मारूफ है, अक्सर आ जाते हैं, आपको कहीं गैरेज सेल का साइन दिखे तो समझ जाए कि वो अपने घर की चीज़ें और औने पौने में बेचते हैं, क्योंकि जाना तो है छोड़ेंगे, चलो 10 वाली चीज लोग 2 में ले जाएं, 4 में, फर्नीचर, घर के कपड़े, पहनने की चीजें, यूं उन्होंने मंडी लगाई होती है अपने पोर्च में निकाल कर। मुझे ऐसे लग रहा है इस आयत को पढ़ के, यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, के लोग कह रहे हैं कि लोगो प्लीज मेरी दुनिया उन्हें पौने खरीद लो, मुझे आखरत चाहिए। ये दुनिया सिर्फ गुजारे की, आखरत में जाना है। वमी यो कातिल फी सबील अल्लाह, अब होगा क्या, छोड़ दी दुनिया आगे असल पे, ठीक है गुजारे की रख ली, अब क्या होगा। वमी यो कातिल फी सबील अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ पड़े। अब लड़ाई समझ आ रही है ना कौन सी है, कोई हथियार नहीं उठाने पड़ते। सबसे पहली लड़ाई तो फजर की है, फजर के लिए कौन उठेगा, जिसको अल्लाह से मिलने का शौक होगा। यहाँ एक छोटा सा नजरिया भी समझ लीजिए तो बातें बड़ी आसान हो जाएंगी, कि जंग के मैदान में या जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकलना उसी के लिए आसान होगा जिसका आम जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों पे निकलना मामूल होगा। अगर आज हम फजर के लिए नहीं उठते, कल हम अल्लाह के दीन के लिए नहीं उठेंगे और जिहाद के लिए नहीं उठेंगे। और जिहाद के लफ्ज को आज इतना बदनाम कर दिया गया कि वल्लाही खौफ खाते हैं लोग अपने बच्चों के सामने बात करते हुए कि कहीं बाहर इन पे टेररिस्ट का लकब ना लग जाए। तो आप देखिए कि एक बंदा नमाज किसके लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला कहते हैं कूमु लिल्लाहि कानितीन, लोग अल्लाह के लिए फरमाबरदार होके खड़े हो जाओ, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए कहते हैं ना। जब तक नमाजों में, लिख लें ये बात, लिल्लाहियत नहीं होगी, जब तक नमाजों में लिल्लाहियत नहीं होगी, जिहाद में भी लिल्लाहियत नहीं होगी। जिहाद करने वाले दो किस्म के ही होते हैं, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और मुजाहिद फी सबील दुनिया। क्या ये दुनिया कमानी आसान है, दुनिया निभानी आसान है, दुनियादारी रखना कोई आसान है? मैं तो लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह बड़े दर्जे होंगे कल इनके, जो दीन क्लासेस स्कूलों के साथ साथ दुनिया भी लेके चल रहे हैं। वद्दुलौतुदखिनु फयुदखिनून, वो तो चाहते हैं कि जरा सा तुम सुस्त पड़ो हम तुम्हें और सुस्त कर दें, तुम उंगली का नाखून पकड़ाओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ के, बल्कि बाजू पकड़ने को तैयार हैं। इतनी दुनिया मुश्किल है और एक रब को मनाना और खुश रखना आसान है, और इतने खुदाओं को खुश रखना बहुत मुश्किल है जिनके साथ हमें वास्ते पड़ते हैं। कुछ तो अपने मनपसंद खुदा भी होते हैं ना नफ्स के ऊपर, खुशी देने वाले, कुछ बोझ भी बन जाते हैं। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, सिर्फ तब निकलेगा जब अल्लाह के नाम पे बाकी काम कर चुका होगा। आप समझिए अल्लाह के नबी की हदीसों से जो जिहाद का मौजू, क्योंकि इन आयात में ये बहुत खुल के सामने आ रहा है। आप देखिए कि हदीस में आता है कि जिहाद क्या है, ज़िरवतुल इस्लाम, चोटी। आप इमेजिनेशन में लाइए एक बिल्डिंग बननी शुरू हुई, 100 मंजिलें हैं उसकी। अब लिखिए जरा अपने पास, सबसे पहले क्या हुआ उसमें, फाउंडेशन, ठीक है ना, बुनियादें पड़ी होंगी ना। अब जिसमें 100 स्टोरीज बननी है तो यकीनन उसमें 50 स्टोरीज जितनी डेप्थ भी होगी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये साइंस का असूल है, तभी तो ये इतने बड़े बड़े बुर्ज खड़े होते हैं, ये पहले जमीन में जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, ठीक है। अब समझिए आप, नीचे फाउंडेशन है, कहाँ गई, मट्टी में पड़ गई, ऊपर लेवल हो गया। अब उस लेवल के बाद पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, दूर से कौन सा दिखेगा जी, आप बताइए, सबसे आखिरी, सबसे आखिरी, खूबसूरत सबसे आखिरी दिखेगा, महंगा सबसे आखिरी होगा, व्यू बड़ा खूबसूरत है, अच्छा बहुत लगता है, दूर से दिखेगा। एक क्या है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक क्या है द मोस्ट प्रोमिनेंट। सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है, टॉप फ्लोर, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ग्राउंड फ्लोर। बात समझ गए, इस्लाम अल्लाह के नबी ने कहा कि जिहाद इज़ द टॉप मोस्ट, ज़िरवा कहते चोटी को, ठीक है। अब आप ऐसे ही अपने जहन में बना लीजिए एक छोटा सा बुर्ज और उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स में नमाज, रोज़ा, हज करते करते आखिर में जिहाद लिख दें। जिहाद सबसे ऊपर है, उसको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्या उसके बीच के फ्लोर आप छोड़ सकते हैं, चलें वो छुटेंगे छुटेंगे, वो नीचे तो आ ही जाएगा ना। आप ये बताइए कि फाउंडेशन नहीं होगी तो क्या टॉप और ज़िरवा बनेंगी, बस ये है नज़रिया। नीचे क्या है, रूट क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अकीदा, दिल में जमा हुआ, मंजा हुआ, गुंधा हुआ अकीदा, हिलने नहीं देता ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग कैसे पढ़ के इसको सो जाएं? ये कलमा बंदे के दिल की दुनिया बदल देता है। तेरा कलमा पढ़ा तो तेरे दीन को ना फैलाऊं, मेरे जैसा भी को महरूम होगा, जबकि मौका भी तूने मुझे दिया। सबसे बुनियाद है सहाबा का वो अमल जो 13 साल तक हुआ, और वो क्या था? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने एक नबी के जरिए एक ऐसा गिरोह तैयार करवा दिया जो फाउंडेशन स्ट्रांग बन गई। आप देखिए, पूरी बिल्डिंग शीशे की बन सकती है, खूबसूरत लगती है ना ग्लासी बिल्डिंग्स, लेकिन फाउंडेशन शीशे की बना के देखें तो क्या होगा? वो सिर्फ आपके ख्वाबों का महल होगा जो उठते ही चिकना चूर हो जाएगा। फाउंडेशन में क्या डलता है? पत्थर डलते हैं, लोहा डलता है, स्टील डलता है, उसमें पिघला पिघला के शीशा डालते हैं, डालते हैं ना, फिर वो जितनी मजबूत है, डोंट वरी, वो कहते हैं फिक्र नहीं करे, 100 के ऊपर भी 10 डालने की गुंजाइश मौजूद है। जब एक मुसलमान की आम जिंदगी में अल्लाह से दोस्ती अतीउल्लाह और रसूल की सुन्नत अतीउर रसूल पुख्ता हो चुकी होती है, उसको परवाह भी नहीं। उसकी तो अल्टीमेट कोशिश क्या है कि मुझे जिहाद तक जाना है, और ये सारे मरहले हैं जिहाद तक जाने के। सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने तैयार किया था। आगे जाके इसी मिसाल को कंटिन्यू करूंगी एक आयत में जाके। तो जिहाद कब होगा? जब बाकी काम ठीक होंगे। अब जिस उम्मत में नमाजों में हाजिरी कोई नहीं, रोजे फर्जी, ज़कातें, तोहफे, खाने पीने, सब क्या कुछ होता है, क्या वो जिहाद करेंगे? जो नमाज के लिए नहीं उठ सकते, क्या दुश्मन के आने पे उठेंगे? जो अपनी जान पे इल्म के लिए माल नहीं लगा सकते, क्या वो कल तलवार खरीदने के लिए लगाएंगे? जो आज कलम नहीं खरीद सकते, बात समझ गए? जिहाद जो है ना, ये बस डिक्लरेशन है कि मैं असल में क्या हूँ, और इसका नुक्ता आगाज कलम पकड़ के होता है, और इसका आखर तलवार में ढलता है। जिन लोगों ने कलम नहीं पकड़े, इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक वाली आयतों पे अमल नहीं किया, फिर वो फल जो कातिल फी सबीलिल्लाह पे अमल कर ही नहीं सकते। ये जो आज के दौर में मुसलमानों को जिहाद का लफ्ज गाली लगता है ना, उसकी वजह आज आपको समझ आ जानी चाहिए कि बाकी दीन कमजोर है। एक तरफ वो होते थे कि जो आके पूछते थे कि बताइए हम क्या करें, अल्लाह को हमारा कौन सा काम अच्छा लगेगा, हम ये कर दें, वो बच्चा बच्चा उठ के चल पड़ता था। लेकिन आज क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को अभी तक वो सोच ही नहीं दी। मेरा तो दिल कट के, जिसको कहते थे कि अलामा इकबाल तो कहते थे ना कि मेरा दिल 30 टुकड़े होता है, सी पारा, ये जो सिपारे की टर्म है ना, ये हम कहते हैं ना कुरान का सिपारा, ये सिपारा नहीं लफ्ज होता, सी है, सी कहते हैं 30 को 30 को, ये 30 पारे सी पारे हैं। अलामा इकबाल के एक शेर में आता है कि यूरोप में जब आए तो उन्होंने देखा मुसलमानों को, आज से 150 साल पहले, तो कहते थे कि यहाँ के मुसलमान और इनकी नस्लों को देखकर मेरा दिल 30 टुकड़ों में ढल जाता है। मैं कहती हूँ आज आते तो 30 नहीं 30,000 टुकड़ों में टूटे होते। आज अगर हम मुसलमानों की जो नस्लें पैदा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, उनका जिहाद क्या है? सिर्फ उनका जिहाद अपना खाना पीना, उनका लिबास, उनकी अलमारी, उनका कमरा, उनका आईपैड, उनका आईपॉड, और उनकी फलां 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 फलां। कहाँ है इंसान की तरबियत में वो नुक्ता? देखिए, समझिएगा, आज वो काम माँ कर सकती है जो बड़े बड़े जरनेल भी नहीं कर पाते। आज हुक्मरान बेबस है ना, या अगर आज अवाम बेबस है, सबको पीछे कर दे। आपके हाथ में इस वक्त उम्मत का मुस्तकबिल है। आप ऐसी नस्लें पैदा करें कि यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा। मैं तो कहती हूँ कि पैदा होने से भी पहले बच्चे के दिल में ये माँ मोहब्बत डाल सकती है कि बेटा इस दुनिया में अबदी नहीं हो। कभी भाई बहन लड़ सकते हैं किसी बात पे? बेटा कोई बात नहीं, देने दो इसको, थोड़े दिन ले ले, तुम्हें हमेशा के लिए मिल जाएगा। खा गया तुम्हारा, खाने दो, 4 दिन के लिए खा गया ना, कितने 10 मिनट 15 मिनट इसको टेस्ट आता रहेगा, देखना तुम्हारे लिए अल्लाह ने आखिरत के लिए तैयार कर दिया। फिर जब ये सोच पैदा होती है तो फिर आप महसूस करते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह होता है।